ओम शांति। आप सभी का वारंगल फुलवाड़ी से जो पधारे हैं, मधुबन बेहद घर, तो आप सभी वारंगल की फुलवाड़ी का इस बाबा के मीठे मधुबन में बेहद घर में बहुत बहुत स्वागत है। और सभी एक हाथ की ताली से हमारी आदरणीय शीलू दीदी का भी स्वागत कर रहे हैं। ये बच्ची को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु आदरणीय दीदी जी दिन रात चिंतन करते हैं कि किस विषय पर रखा जाए, कौन सी फैकल्टीज को बुलाया जाए। आप सब इतने दूर दूर से आते हैं तो बाबा के घर से कैसे भरपूर होकर के जाए, ये दीदी का एक ही लक्ष्य रहता है। आप सभी दीदी को तो जानते ही हैं, हम भी परसों से जानते हैं, तो दीदी के लिए कुछ पंक्तियां लिखी है, हम सुनाना चाहेंगे। राजयोग की गहराई में जाकर, राजयोग की गहराई में जाकर आपने सबको दिव्य अनुभव कराए। मनन चिंतन से सबके जीवन को सच्चा स्वरूप बनाया। सादगी समर्पण और सेवा जिनकी पहचान है, जिनकी वाणी से माधुर्य बहता है, सत्य प्रेम और शक्ति की आप महान मसाल हो। सत्य प्रेम और शक्ति की आप महान मसाल हो। कई दशकों से चल रही सेवा की डगर हर आत्मा में आप भरती है नई उमंग का सागर। पिताश्री ब्रह्मा बाबा की शिक्षाओं की जीवित व्याख्या है आप दीदी जी। तो ऐसी दीदी जी जो हमें बच्ची के प्रथम सत्र में मिले हैं, जो आपको लक्ष्य और उद्देश्य सुनाएंगे, आप जिस लक्ष्य और उद्देश्य से आए हैं उसमें कैसे आप सफल हो, किस प्रकार आप प्राप्ति करके जाए बाबा के घर से, तो आदरणीय शिलू दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। लौकिक नाम इशिता बहन है और अहमदाबाद में नवरंगपुरा सेवा केंद्र है, और यज्ञ से जो खुशराजी भवन का निर्माण हुआ है, सीनियर सिटीजन ओल्ड एज होम, तो वो भी अहमदाबाद में ही है, तो दोनों को निमित्त बनकर के संभाल रहे हैं। यज्ञ ने जिम्मेवारी दी है और मुझे भी भाग्य मिला है आप सबके साथ बच्ची करने का, और पिछले 36 ईयर्स से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति।
तो अभी आपके सारे क्लासेस आप ही देखेंगे। सबको मिल गया? ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सर्व एडवांस पार्टी की दादियां दादाएं तथा सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आप सभी भाई बहनों का मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि में मेरी तरफ से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मुझे बताया गया कि आपने बहुत समय से अर्जी डाली थी कि हमको पांडव भवन में भट्ठी करनी है, पांडव भवन में भट्ठी करनी है। तो अभी जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आज आ गया। ऐसे ही कहेंगे ना, तो बहुत अपने लिए ताली बजाओ। तो पहली बार पांडव भवन में भट्टी कर रहे हैं या पहले आपका ग्रुप कर चुका है? पहली बार की तो और तालियां बजाओ। तो एक कदम तो आपने आगे बढ़ाया, उसकी तो आप सबको मुबारक है। अब इसके आगे ये अगले 4 दिन आपको यहाँ से पूरा लाभ लेना है। तो जैसे ही आप पहुँचे, आपको अकोमोडेशन मिला और आपको ये माला मिली। इस माला में बैज है और इस बैज पर क्या लिखा हुआ है? बेहद की वैराग्य वृत्ति, अंतिम पुरुषार्थ, योग तपस्या भट्टी। पढ़ा आपने जो लिखा है? पढ़ा आपकी कहाँ है वो? नहीं है क्या? कहाँ है? नहीं मिला है आपको? माला नहीं मिली है? अच्छा, टीचर्स को नहीं मिली है? अच्छा, तो पढ़ा सभी ने? हिंदी सभी पढ़ते हैं? पढ़ सकते ना, मुरली तो पढ़ते होंगे। तो बैज पर ये लिखा हुआ है। तो इसमें पहला लक्ष्य है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे आए, और फिर है अंतिम पुरुषार्थ हमारा कैसा हो, उस पर ही आपकी सारी क्लासेस चलेगी। तो वैसे देखा जाए, जब भी कोई नए व्यक्ति आते हैं तो जरूर पूछते हैं, बाबा की मुरली में भी आता है कि लोग पूछते हैं, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, आप लोग क्या सिखाते हो, क्या बताते हो। तो उद्देश्य जब पूछते हैं तो हम उनको बहुत सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं? यहाँ हमारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना, है ना? यही कहते हैं, बाबा भी मुरलियों में कहते हैं। कोई भी आए तो उनको क्या कहो कि यहाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो मनुष्य से देवता बनना ये कहने में तो बहुत सहज है, लेकिन ये भी एक लंबी यात्रा है। आज आपका ये भी एक टॉपिक होगा, कर्मातीत बनने की भी यात्रा है। तो मनुष्य से देवता बनने की भी एक यात्रा है। जब हम बाबा के पास आते हैं तो कोई हम बने बनाए ब्राह्मण तो आते नहीं हैं। कितनी हमारे में कमियां होती है, कितने व्यसन होते हैं, कितने विकार होते हैं। तो बाबा कहते सब शूद्र है ना, इस दुनिया में इस समय सब शूद्र है। शूद्र माना क्षुद्र, क्षुद्र माना गिरा हुआ, पतित। तो हम सब पतित ही थे, इसलिए तो मंदिरों में जाकर गाते थे कि मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, भगवान मेरे में कोई गुण नहीं है, आप हमारे अंदर गुण भरो। या कहते थे कि हम पापी है, नीच है, दास है, कपटी है, गंदे हैं, बंदे हैं, हम भगवान तेरे चरणों की धूल है, यही अपने लिए कहते थे। तो अपने को पापी कहते थे, पतित कहते थे। आप ही आकर हमें पावन बनाओ, ये भी हमने भगवान को कहा। तो जब हम बाबा के घर आते हैं तो हम तो ऐसे ही थे, और फिर हमें ज्ञान मिला, ज्ञान मिला कि आप आत्मा हो, ज्ञान परमात्मा का भी मिला, परिचय मिला, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला, कर्मों का ज्ञान मिला, बहुत कुछ ज्ञान हमें 7 दिन के कोर्स में मिला। तो बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान का 3रा नेत्र मिल गया, है ना, सभी को है ना ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो सभी त्रिनेत्री है, है सभी त्रिनेत्री, सभी त्रिनेत्री है, सबको तीसरा नेत्र मिल गया। इस तीसरे नेत्र से हम क्या देखते हैं, तीनों लोकों को देखते हैं, तीनों कालों को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, स्वर्ग को देखते हैं। तो इस नजर से हम बहुत कुछ देखते हैं। जो पहले ये नहीं थी आँख, तो हम नेत्रहीन थे, अंधे ही थे, हाँ, ज्ञान का नेत्र नहीं था। अब बाबा से ये नेत्र मिला, तो लक्ष्य हमें क्या मिला, पहला लक्ष्य हमें क्या मिला कि अभी हम शूद्र से हमको ब्राह्मण बनना है, ब्रह्मा के मुख व संतान बनना है। जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान दिया, उस ज्ञान को धारण करके हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। तो अभी हम क्या नशे से कहते हैं, अभी नशे से यही कहते हैं ना कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी है ना। इसका भी नशा है, नशा सभी को, सभी को ये नशा है। तो ब्राह्मण बनना ये पहला लक्ष्य है। और जब ब्राह्मण बनते, आज बाबा ने देखो ब्राह्मण की क्या क्वालिटीज बताई। ब्राह्मण किसको कहेंगे, ब्राह्मण बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए। पहले तो शुद्ध अन्न चाहिए, आज बाबा ने अन्न पर कितना काम, मुरली में शुद्ध अन्न चाहिए, और वो भी शिव बाबा की याद में पकाया हुआ, वही भोजन स्वीकार करना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो अर्थात शुद्ध अन्न, जिसको बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन, तो ब्रह्मा भोजन माना शुद्ध आहार, परमात्मा की याद में पकाया हुआ, फिर उनकी याद में उनको भोग लगाया हुआ और फिर स्वीकार करें, तो ब्रह्मा भोजन। फिर दूसरा कदम, बाबा संघ की शुद्धि भी कहते हैं, संघ हमारा कैसा हो, क्योंकि अभी तक जो संघ मिला वो शूद्रों का ही संघ मिला, विषय विकारी का संघ मिला। अब भगवान का संघ हमें मिलता है तो सत्संग करते हैं, तो वो संघ का रंग हम अपने ऊपर लगाते हैं, सत्संग में आते हैं। सच्चा सत्संग यही है, बाबा कहते हैं सच्चे परमात्मा के साथ आपका संघ है। तो अन्न भी शुद्ध, फिर संघ भी शुद्ध, और फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप जो हमें सिखाते हैं, शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा सिखाते हैं, उनको फिर फॉलो करना है। तो ब्रह्मा से कई बातें रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, एक तो ब्रह्मा भोजन, दूसरा ब्रह्म ज्ञान, भक्ति में भी ब्रह्म ज्ञान का बहुत महत्व है। तो ब्रह्म ज्ञान माना जो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया वो सच्चा ब्रह्म ज्ञान हो गया। फिर तीसरा ब्रह्म मुहूर्त, तीसरा हमारा क्या नियम है, अमृत वेले उठना। पहले तो पता नहीं कितने बजे उठते होंगे, बहुत ही, अगर रात को देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे। तो अभी ब्राह्मण बनना माना ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करना, तो ब्रह्म मुहूर्त। फिर चौथा ब्रह्मा से रिलेटेड है ब्रह्मचर्य, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हैं। तो ब्रह्म भोज, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त और चौथा ब्रह्मचर्य। अब ये चारों बातें ब्रह्मा से रिलेटेड है, तो फॉलो करना है ना, जो ब्रह्मा ने किया ब्रह्मा के बच्चे भी वही करते हैं। तो जैसे हम सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, बाबा के नियमों पर चलते हैं, तो माया तो विघ्न डालती है, माया को तो ये पसंद नहीं है, क्योंकि माया के मुरीद थे, आज भी बाबा ने कहा, तो माया के मुरीद थे, मुरीद थे माने गुलाम थे, माया ही आप हमको चलाती थी। अभी भगवान के मुरीद बने हैं, भगवान हमको जैसे चलाते हैं वैसे हम चलते हैं, तो परीक्षाएं बहुत आती है। आप सबके जीवन में भी बहुत परीक्षाएं आई होगी, लेकिन अगर बाबा का संग है, एक का संग है, तो फिर हम उन परीक्षाओं से सहज पार हो जाते हैं, क्योंकि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो पहला लक्ष्य हमें क्या मिला, सच्चा ब्राह्मण बनना है। अब वो पहला कदम तो पास कर लिया, अब इसके आगे क्या करना है। इसके आगे बाबा कहते हैं तुमको बाप समान बनना है, ये फिर दूसरा कदम है। ब्राह्मण बने, ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलना शुरू किया, लेकिन वहां तक ही नहीं रुकना है। ब्रह्मा बाबा कैसे संपूर्ण बने, संपन्न बने, तो उनके समान हमको बनना है। कल की परसों की अव्यक्त मुरली भी यही थी, संपन्न संपूर्ण और समान बनना है। तो ब्रह्मा बाप के समान संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना, ये हमको दूसरा लक्ष्य मिला। तो समान और संपूर्ण और संपन्न, इसका मतलब क्या है? तीन शब्द है, ब्रह्मा बाप समान, उसके लिए हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे? संपन्न का मतलब क्या है, संपूर्ण का मतलब क्या है? हाँ, तो मिसाल दिया जाता है जैसे चंद्रमा, जब फुल मून होता है, पूर्णिमा की रात होती है, तो चंद्रमा संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। तो संपन्न किस में, लाइट में। बाकी जितने भी दिन चंद्रमा होता है उनकी लाइट कम होती है, पर पूर्णिमा की रात सबसे मैक्सिमम लाइट होती है चंद्रमा में। तो संपन्न माना फुल, कम, फुल फुल लाइट, और फिर संपूर्ण माना कंप्लीट, अर्थात गोलाकार। बाकी दिन गोलाकार नहीं होता है चंद्रमा का, वो क्रिसेंट मून होते हैं, हाँ कैसे होता है, लेकिन पूर्णमासी की रात गोल, कंप्लीट राउंड। तो संपन्न भी और संपूर्ण भी, लाइट में संपन्न और पवित्रता में संपूर्ण। इसीलिए देवताओं की महिमा में क्या आता है, सर्व गुण संपन्न। तो सर्व गुणों में संपन्न, आत्मा की लाइट जो गुणों के आधार पर है, उसमें हम फुल बनते हैं। सब गुण जो आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, अनादि गुण और आदि गुण, अनादि गुण और आदि गुण, इन दोनों प्रकार के गुणों में आत्मा संपन्न बनती है। तो ये हमारा लक्ष्य होता है। तो अनादि गुण कौन से हैं आत्मा के, सात मूल गुण बताते हैं ना आत्मा के, जिनको हम कहते हैं कोर वैल्यूज, उसका ओरिजिनल गुण। जैसे हर चीज की ओरिजिनल नेचर होती है, तो आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है, जो उसके मूल गुण है, वो मूल गुण सात बताते हैं। कौन से, सबसे पहले है ज्ञान। हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अज्ञानी नहीं है, हर आत्मा को ज्ञान है, क्या करना है इन्हें, क्या नहीं करना है, एक छोटे बच्चे को भी पता है, तो ज्ञान स्वरूप। और जब ज्ञान हमें मिलता है तो उससे आत्मा पवित्र स्वरूप का अनुभव करती है। तो ज्ञान से पवित्रता आती है, तो ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, और जब पवित्र स्वरूप है, पवित्र विचार है, तो फिर पवित्रता का परिणाम क्या है, शांति, क्योंकि पवित्रता शांति की जननी है, माँ है। तो पवित्रता के बाद है शांति, फिर तीसरा गुण, फिर तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, फिर जहाँ अंदर में शांति है तो सबके लिए प्रेम। ये प्रेम आत्मा का असली गुण है, प्रेम सिखाया नहीं जाता है, ये तो आत्मा का निहित गुण है। और जहाँ प्रेम है वहां फिर सच्चा सुख है। तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, और जहां वो आत्मिक सुख है उसका चरम रूप है आनंद। हर गुण का चरम रूप आनंद में एंड होता है। शांतानंद, शांति का चरम रूप उस शांति का आनंद, तो शांतानंद, प्रेमानंद, तो सुखानंद, ये सब विवेकानंद, ज्ञान माना विवेक, तो विवेकानंद। तो ये जितने भी साधु संत महात्मा है ना, उनके जो नाम होते हैं ना, उनका वो नाम का जो एंड होता है वो आनंद में होता है। सत चित आनंद, सत्यानंद, दयानंद, तो ये आनंद, तो वो सभी गुणों का जो कंप्लीट फॉर्म है वो आनंद का रूप ले लेता है। पर मनुष्य इस आनंद को नहीं समझते। वो आनंद को किस रूप में लेते हैं? इंद्रियों के सुख को आनंद समझते हैं। कोई चटपटी चीज बहुत तीखा, मिर्ची खूब मसाला, वो खाते ना, वाह 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 मजा आ गया, हाँ जीव को मजा आ गया, तो क्या बोलते, आनंद आ गया। कोई फिल्म देखते हैं तो वो फिल्म में बहुत आकर्षण है तो आनंद आ गया। कोई संगीत सुनते हैं आनंद आ गया, लेकिन ये कौन सा आनंद है? वो कौन सा आनंद है? वो तो फिजिकल है ना, भौतिक, लेकिन सच्चा आनंद तो आध्यात्मिक है। तो आनंद अर्थात वो गुणों का चरम स्वरूप। और जब सच्चा आनंद अंतर, जिसको बाबा कहते हम कई बार बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चों को अति इंद्रिय सुख मिलता है। तो अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोपी गोप गोपियां कौन है? हम बच्चे, तो हमसे पूछो। है ना, सभी को ये आनंद का अनुभव, अति इंद्रिय सुख का अनुभव। और इस आनंद की स्थिति में आत्मा को शक्ति का अनुभव होता है, इसको विल पावर कहते हैं, आत्मबल कहते हैं। वो आत्मबल कैसे आता है? जब अंदर में ये बाकी छह गुण हैं, तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये आत्मा के मूल गुण हैं। और ये जब आत्मा के मूल गुण, जिसको अनादि गुण कहते हैं, वो आत्मा कैसे अनुभव करती है? वो है अंदर, लेकिन अब भूल गए ना, अब भूल गए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो याद कराना पड़ता है खुद को। इसलिए कमेंट्री क्या देते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जो शांति अंदर सोई हुई है उसको जगाते हैं। हाँ, पहचानो अपने आप को, जागो, तो आत्मा जाग जाती है और शांति का अनुभव करती है। क्योंकि ये सारे जो भी गुण हैं, ये हमारी संकल्पों में हैं। एज यू थॉट, एज यू थिंक, सो शैल यू बिकम। आप जैसा सोचेंगे वैसा अनुभव करेंगे। अगर शांति के विचार सोचेंगे तो शांति का अनुभव करेंगे, अशांति के विचार सोचेंगे तो अशांति का अनुभव करेंगे। तो शांति अशांति ये तो सब मन की स्थिति है। तो इसीलिए ये सातों ही गुण, ये आत्मा के गुण हैं, जो हम मन में चिंतन करने से अनुभव करते हैं। तो ये अनादि गुण, फिर आदि गुण कौन से हैं? जो देवताओं के गुण हैं, उसका हम रोज पुरुषार्थ करते हैं। बाहर लिखा है ना, हिस्ट्री ऑल के बाहर 36 गुण हैं। तो कहाँ से शुरू करते हैं? आज भी बाबा ने अंतर्मुखता को कितना महत्व दिया, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, निर्भयता, सरलता, कितने गुण हैं। और बाबा कहते हैं रोज एक एक गुण पर ध्यान दो, मेरे अंदर ये गुण कहाँ तक है, कितनी परसेंटेज में आए हैं, उसका चार्ट लिखो। तो ये गुण कैसे आएंगे? ये दैवी गुण है, वो ईश्वरीय गुण है, जो सात मूल गुण बताए, ये दैवी गुण है। तो हम जो देवता बनना है तो देवता बनने के लिए ये दैवी गुण अभी धारण करने हैं, सतयुग में नहीं जाकर के धारण करने हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, हमारे अनादि और आदि गुणों को पहचान करके उनको अपने अंदर धारण करना। अब ये हमारा लक्ष्य एक हो गया तो फिर उसके बाद हम ब्रह्मा बाप समान बनते हैं। ब्रह्मा बाबा कैसे धीरे 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 कर्मातीत बने। कैसे बने कर्मातीत? कर्म करते हुए भी कर्म का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। आपका एक टॉपिक है इस भट्टी में, तो कर्म के प्रभाव से परे थे। हमने दादियों को देखा, हम लोग थोड़ा भी कुछ अच्छा काम करते हैं कितना वर्णन करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बड़े नशे से सबको सुनाते हैं। पर हमारी दादियां कभी नहीं सुनाती थी। मैं एक मिसाल देती हूँ, दादी जी का तो बहुत मिसाल है। कितने टूर पर जाते थे, वापस आते थे तो दादी जी अनुभव कुछ नहीं सुनाती थी, मोहिनी बहनी सुनाती थी। दादी तो कहती थी मैं तो भूल भी गई। दादी जानकी भी कभी नहीं सुनाती थी अपना सेवा का समाचार। तो बहुत बड़ी घटना थी कि एक बार दादी जानकी जी यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने भाषण किया था। 3 मिनट का भाषण इंग्लिश में किया, उनको लिखत दी थी दादी जानकी को, पढ़ के सुनाया, पर इतने नशे से सुना यूनाइटेड नेशंस में, तो बहुत सब ने तालियां बजाई कि इतनी बड़ी 80 साल की बूढ़ी ऐसे इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश आती नहीं, और उन्होंने कितना भवके से सुनाया, बहुत अथॉरिटी से सुनाया जो भाषण किया, तो बहुत लोगों ने तारीफ की। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद वो मधुबन आई दादी जानकी, तो मैंने अनायास दादी से पूछ लिया, दादी आप यूएन में गए थे, वहाँ आपने भाषण किया, तो दादी आपने उस समय क्या अनुभव किया? दादी कहती मैं तो भूल भी गई, मैं तो भूल ही गई। हाँ, इतना बड़ा आज को यूएन में भाषण करके आए, वो भूलेगा क्या? हाँ, सबको सुनाएगा, अरे मेरा तो यूनाइटेड नेशंस में भाषण था, लेकिन कहा मैं तो भूल ही गई, मुझे तो याद भी नहीं है। मानो कि दादी जैसे सुनाती थी उसके बाद भूल जाती थी। कोई दादी के ऊपर वो अभिमान आना ये तो कुछ बात ही नहीं थी, ये विशेषता थी दादियों की। तो ब्रह्मा बाबा की भी यही विशेषता थी। कितने, इसलिए आपका ये भी एक सब्जेक्ट है, निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्थिति, तो कैसे बाबा ने अपनाई। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया कदम पर कदम हमें भी रखना है, तब तो ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। तो पहला कदम क्या था, पहला लक्ष्य क्या था कि शूद्र से ब्राह्मण बने। ब्रह्मा ने जो किया, ब्रह्मा के जो आचरण है उस अनुसार हमने वो भी अपना आचरण बनाया। फिर दूसरा कदम क्या किया कि जो हमारे अनादि गुण उनको पहचाना, आदि गुणों को पहचाना, देवता बनना है ना। फिर उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे कर्म करते करते न्यारे भी बनते गए, जैसे ब्रह्मा बाबा बने, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब भी कोई ऐसा अच्छी सेवा करो तो बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये अभिमान दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सेवा तो हम सेवाधारी है ना, बाबा कहते टीचर्स को भी क्या, बाबा कहते मैं टीचर हूँ नहीं, क्या समझो, मैं सेवाधारी हूँ। सेवाधारी हूँ ये समझेंगे ना तो अभिमान नहीं आएगा, नहीं तो मैं इंचार्ज हूँ तो अभिमान आ जाएगा, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, नहीं मैं सेवाधारी हूँ। तो सेवाधारी हूँ, भगवान आकर खुद कहते मैं सेवाधारी हूँ, तुम बच्चों का मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। भगवान इतने ऊंचे से ऊंची हस्ती, वो भी कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, और हम कौन होते हैं जो कहेंगे हम बहुत ही बड़े हैं, हम भी तो सेवाधारी ही हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा के हर कदम पर चलना, तब हम ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। और ब्रह्मा बाप ने जो किया वो मुझे करना है, तो ब्रह्मा बाबा ने जो जो किया वो उन कदमों पर चलते चलते हम ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। तो इसीलिए हमारा दूसरा लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान, तो समान बनना, तभी तो हम बाबा के साथ जा सकेंगे। अब ब्रह्मा बाबा तो वतन में बैठे हैं, फरिश्ता के रूप में हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहते कब तक इंतजार करूं। 1969 में बाबा अव्यक्त हुए और अभी है 2025, तो कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, गिनती करो भाई, कितने साल हो गए जी। हाँ 69, 56 ईयर्स। और अभी मम्मा का हम 50th ईयर मना रहे हैं। मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ा, तो अभी हम 50th ईयर मनाएंगे मम्मा का, जो अभी 24th जून को मम्मा का दिन है। तो मम्मा ने मानो सबसे पहले शरीर छोड़ा। ये भी देखो, यज्ञ में जब थे 14 साल, तो उस समय बाबा ने कहा था कि सब बच्चे इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे ही जाएंगे, सब एक साथ वापस जाएंगे घर। तो सब ने क्या समझ लिया कि कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा, सब इकट्ठे जाएंगे, ये सोचा ना, तो सब इकट्ठे जाएंगे तो शरीर कैसे छोड़ेंगे। लेकिन मम्मा ने शरीर छोड़ा। अब जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, आपने लेटेस्ट मुरलियां भी सुनी होगी, कैसे बाबा अडिग रहे, अटल रहे। हाँ, तो क्योंकि उस समय जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, बहुत बहनें इतना रोई, क्योंकि मम्मा से बहुत प्यार था। एकदम अनएक्सपेक्टेड मम्मा का जाना, कोई ने संकल्प भी नहीं किया होगा कि मम्मा शरीर छोड़ेगी, लेकिन मम्मा ने शरीर छोड़ा। तो कैसे ब्रह्मा बाबा कितने स्ट्रांग रहे। और बाबा ने क्या कहा, अभी ये बड़ी मम्मा कौन है, ब्रह्मा बाबा ये बड़ी मम्मा है, वो तो बाबा की बच्ची है, बेटी है सरस्वती। तो इसीलिए बाबा ने किसी को रोने नहीं दिया। तो जब शरीर छोड़ा, तो लोगों के मन में प्रश्न उठा कि बाबा ने तो कहा था सब साथ में चलेंगे, तो मम्मा चली गई। तब बाबा ने क्या कहा, फिर ट्रांस मैसेज क्या आया कि अभी एडवांस पार्टी शुरू होगी, मम्मा लीडर बनेगी और एडवांस पार्टी अभी शुरू होगी, और एडवांस पार्टी वाले भी चाहिए जो सतयुग के योग बल की रचना रचे। तो योग बल की रचना रचने के लिए कितने योगी आत्माएं चाहिए, तभी तो सतयुग की पहली रचना रचेंगी ना, योगी आत्माएं चाहिए। तो इसलिए मम्मा वो एडवांस पार्टी की लीडर बनी। फिर देखो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। अब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो एक और बड़ा शौक, ब्रह्मा बाबा चले गए अभी तो, कईयों ने समझ लिया अभी तो संस्था खत्म हो गई। जैसे किसी का जो मेन गुरु होता है वो शरीर छोड़ता है, तो संस्था डामाडोल हो जाती है। देखा ना कईयों की संस्थाएं, बस ऐसे ही कोई उनका कोई होता ही नहीं है लीडर जो स्पिरिचुअल हेड बने, अगर दूसरे होते भी उनमें ताकत तो इतनी होती नहीं है। तो बाबा चले गए, लेकिन बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा का पाठ चला, और अव्यक्त बाप दादा के पाठ से देखो जो साकार बाबा के समय जो सेवाएं चली, बाबा कहते ये चीटी मारक की सेवाएं थी। चीटी कैसे चलती है ना, एंट कैसे चलती है धीरे धीरे। और अभी अव्यक्त पाठ जब शुरू हुआ तो बाबा की सेवाएं विहंग मार्ग से चली। विहंग माना पक्षी, तो कहां चीटी की स्पीड और कहां पक्षी की स्पीड, कितना अंतर। तो इस स्पीड से बाबा की सेवाएं चली। साकार में बाबा ने बहुत कुछ कहा, बच्चे आगे चल के ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो जब बाबा कहते थे तो लगता था ये तो हाउ विल इट बी पॉसिबल, कैसे होगा ये सब, इम्पॉसिबल लगता था। बाबा कहते तो है परंतु प्रश्न चिन्ह था बच्चे की बुद्धि में। और अव्यक्त बाप दादा की जब सेवा शुरू हुई तो देखो कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से दादी और दीदी के सानिध्य में ये संस्था कितनी आगे बढ़ गई। विदेशों में सेवा खुली चली, इतने सेंटर्स खुले देश विदेश में, कितनी आगे बढ़ गई। तो देखो ये भी पार्ट। फिर धीरे धीरे फिर दादी जी चले गए 2007 में, लेकिन सेवाएं कोई घटी नहीं, क्या हुआ और ये और बढ़ गई सेवाएं। फिर दादी जानकी जी गए, फिर तो अव्यक्त पाठ भी खत्म हुआ। जब अव्यक्त पाठ का लास्ट 1 साल था तो बाप दादा की जवानियां चलती थी, बाबा यही कहते थे, बच्चे कुछ भी हो जाए यही कहो वाह 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 ड्रामा वाह, याद है, वाह 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 बाबा मुरलियों में कहते थे। तो मैं उसी समय समझ गई कि ये अव्यक्त पार्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और सचमुच 2020 में जानकी दादी गए, 2021 में गुलजार दादी जी ने देख त्याग किया, लेकिन बाबा की सेवाएं तो और बढ़ गई। कितनी रिट्रीट सेंटर्स खुले हैं, चारों ओर रिट्रीट सेंटर बनते जा रहे हैं, सेवाएं चल रही है गली गली में, गीता पाठशालाएं, हाँ यहाँ भी जो बैठे हैं कितने हैं जिनके घरों में गीता पाठशालाएं, यहाँ तो उठाओ, कितनों के घरों में गीता पाठशालाएं हैं जी, हाँ देखो हाथ उठा रहे हैं, देखो इतने भाई बहनों के घरों में गीता पाठशालाएं हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी समय आएगा गली गली में गीता पाठशाला सेवा केंद्र, क्योंकि वो समय आएगा जब लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, तो उनके बहुत नज़दीक चाहिए, तो देखो वो भी अभी सेवाएं चल रही है। बाबा के दिनों में गांव-गांव में सेवा नहीं थी, अभी तो देखो गांव-गांव में सेवा है, बाबा कहते थे गांव-गांव में सेवा करो, तो अभी देखो गांव-गांव में बाबा की सेवाएं कितनी, बात नहीं पूछो, आंध्रा में तो बहुत है, कर्नाटक में देखो जहां जाओ गांव-गांव में सेवाएं, गुजरात में तो इतनी सेवाएं नहीं, कितनी सेवाएं, महाराष्ट्र में देखो सब जगह। और बाबा के बच्चों की कितनी वृद्धि, उस समय मकान कितने कम थे, अभी देखो बाबा ने कितने मकान बना दिए, बाबा कहते अंत में सब बच्चे आके रहेंगे। तो देखो ये वृद्धि कैसे हो रही है, तो हम तो कहेंगे ये दादियां कैसे सूक्ष्म रूप में सेवा करा रही। और अभी तो सचमुच बाप समान बनने की स्थिति सबकी आई है, विनाश भी हम देख रहे हैं, कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इतनी चिंगारी बढ़ चुकी है, कितने युद्ध हो रहे हैं, कभी भी एटम बॉम्ब चला सकते हैं, बिल्कुल खतरा ऐसा है जो बाबा कहते हैं आज ये सृष्टि रेत के ढेर पर खड़ी है, रेत रेत पर कोई बिल्डिंग बनाए तो क्या होगा, कितनी देर लगेगी उसको नीचे गिरने में, आज वो हालत है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है विनाश, क्यों नहीं हो रहा है, या अभी इंडिया पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ, चार पांच दिन चला फिर बंद हो गया, नहीं तो धमकी दे रहे थे ब्रह्मोस चलाएंगे, ये करेंगे, एटम बॉम्ब छोड़ेंगे, और अचानक बंद हो गई, तो क्यों बंद हो रही है, क्यों नहीं चलता है, कारण क्या है, तो कारण बाबा कहते आप बच्चे हो, हम बच्चे हैं, कैसे हम बच्चे कैसे हैं, कारण क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है, अब पर्दा खोलने वाले तो तैयार बैठे हैं, पर स्टेज पर जो पाठ बजाने वाले हैं वो तैयार नहीं है, तो पर्दा कैसे खोले अंदर तो तैयार हो रहे, तो स्थापना करने वाले अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, तो विनाश करने वाले विनाश कैसे करेंगे, है ना, करें विनाश अभी हो जाए, बच्चे तैयार बैठे हैं। बाबा कई बार पूछते हैं बच्चे घर चलना है, जो समझते हैं घर चलना है हाथ उठाओ, सारे पर तैयार हो, तैयार हो, जो समझते हम तैयार है हाथ उठाओ, 100% तैयार हो, संपूर्ण हो गए, तैयार माना संपन्न और संपूर्ण, वो हो गए या नहीं हुए अभी तक, तो कैसे कहेंगे तैयार हो, वो तो संपन्न और संपूर्ण होकर ही जाना है ना, ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न संपूर्ण बने, उनके समान बनकर ही तो हम संपन्न, हम ब्रह्मा बाप समान कहलाएंगे ना, तो वो तो बने नहीं है, इसीलिए सब रुका हुआ है। कई बार हम सुनाते हैं ना, बाबा ने एक बार पूछा था बच्चे डेट बताओ, डेट बताओ, अब कौन डेट बताए, कब चलना है घर, कब विनाश करे, प्रकृति पूछ रही है, एडवांस पार्टी पूछ रही है, कब तैयार होंगे, कब चलेंगे। अब दोनों बाबा से पूछ रहे हैं और बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, जो तैयार है हाँ कौन तैयार है। तो अभी तो उसी समय बाबा ने जब पूछा तो आगे जो बैठे थे उसने एक ने कहा, हाँ बाबा बस ये सीजन पूरी होगी ना, हम तैयार हो जाएंगे। हाँ तो बाबा ने कहा, क्या आपने सबका ठेका उठाया, सब तैयार हो जाएंगे। हाँ तो सबका ठेका तो हम नहीं उठा सकते ना, तो चलो हम कहेंगे। फिर बाबा ने दादी जानकी से पूछा, बताओ डेट। तो दादी ने कहा, बाबा मैं तो तैयार हूँ, बाकी डेट क्या, मैं तो तैयार हूँ। तो दादी को बाबा ने कहा, तुम क्या अकेली जाओगे क्या, तुमको तो सबको ले जाना है। तो देखो बाबा डेट मांग रहे हैं, बच्चे कब तैयार होंगे। तैयार होंगे तभी तो घर चलेंगे ना, और ब्रह्मा बाबा के साथी बनेंगे। तो ऐसे तो नहीं कि हम बराती बनेंगे, हमको तो साथी बनना है। तो इसीलिए संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, सर्व गुणों में संपन्न और सर्व 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्ण किसमें, कलाओं में। और कलाएं कौन सी होती है, पवित्रता की कलाएं। इसलिए भारत का जो पहले जो करेंसी था वो 16 आना माना 100%। तो 16 आना सच कहते थे ना, तो 16 माना कंप्लीट। तो ये 16 कला संपूर्ण माना सर्व आत्मा की जो प्यूरिटी की कलाएं हैं वो कंप्लीट आत्मा में आ जाती है और फुल बन जाती है आत्मा, फुल इन लाइट, फुल इन इन ये क्या कहेंगे सर्कल, फुल इन फॉर्म। तो फुल इन लाइट, फुल इन फॉर्म, तो वही आत्मा को बनना है तब संपूर्ण कहलाएंगे। फिर बाबा कहते हैं जब संपूर्ण बने तो फिर फरिश्ता बने। तो ब्राह्मण बनने के बाद क्या बनना है हमें, ब्राह्मण बनने के बाद संपन्न संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान बनना है, फिर जाकर फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता की क्वालिफिकेशंस भी अभी चाहिए। फरिश्ता माना डबल लाइट, फरिश्ता माना अशरीरी। बाबा प्रैक्टिस कराते हैं अव्यक्त मूल्यों में, एक सेकेंड में अशरीरी हो जाओ, बस ये देह के भान से परे एक सेकेंड। कर्म करते हुए भी अशरीरी अवस्था हो सकती है। मैं बाबा करण करावन हार मेरे से करा रहा है और मैं करावन हार इंद्रियों से करवा रही हूँ, करवा करके फिर न्यारी बन गई। तो ये जो आत्मा की स्थिति है ये कर्मातीत बनने की स्थिति है। तो फिर बाबा कहते हैं तुम कर्मातीत बनोगे, फिर संपूर्ण बनोगे, फिर फरिश्ता बनोगे, फिर फरिश्ता के बाद फिर क्या बनना है हमें, घर जाना है। पर कैसे जाएंगे, सजा खाकर नहीं जाना है। सजा खाकर जाएंगे तो बाबा का भी नाम बदनाम होगा, बाबा का भी नाम बदनाम होगा ना। ब्राह्मण बने, बाबा के डायरेक्ट पालना ली, और देखो इतना अभी तक पाप का बोझा सिर पर था जो सजा खानी पड़ी। बच्चा अगर कोई भूल करता है उसको सजा मिलती है, तो बाप का नाम भी कितना बदनाम होता है, तो बाबा का भी नाम बदनाम होता है। अरे भगवान के बच्चे और ऐसी सजा खा कर जाएंगे, तो इसीलिए सजाएं भी ना खाएं। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम होगा। बाबा इसलिए हर मुरली में क्या कहते, लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे। फिर बाबा कहते कि शक्ल तो पहले देखो, नारद आज भी था ना मुरली में, तो नारद ने सोचा लक्ष्मी मेरे को वरमाला डालेगी, लेकिन वरमाला तो नारायण को डाली, कौन नारद को डाली। पर नारद था कौन, वो भी ब्रह्मा का बेटा था, परंतु उसको बड़ा अभिमान था, मैं तो बड़ा भक्त हूँ, सारा दिन नारायण 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 करता रहता हूँ। तो ये बाबा कहते हैं ना, तो ये भी अभिमान नहीं करना है, परंतु नम्र हो करके बाबा की याद में रहना है, ब्रह्मा बाबा जैसे थे। तो फरिश्ता बनकर हमें वापस घर जाना है बिना सजा खाए, उसके लिए इतनी याद की शक्ति चाहिए। फिर घर जा करके फिर बाबा कहते तुम नई दुनिया में आएंगे, देवता बनकर आएंगे तो कितनी बड़ी लंबी यात्रा है ये। ऐसे नहीं बस मनुष्य से देवता बन गए। भले बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, पर सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब निश्चय सेकंड का होता है। सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब कैसे, कोई जादू नहीं है कि छड़ी घुमाई और जीवन मुक्ति हो गई, लेकिन निश्चय, निश्चय होने में एक सेकंड मिलने लगता है और संशय होने में भी एक सेकंड लगता है। अभी अभी निश्चय हुआ मैं आत्मा हूं, अभी अभी नहीं नहीं आत्मा वात्मा कुछ नहीं है ऐसे हो सकता है। इसीलिए मैं बाबा का बच्चा हूं, निश्चय होने में एक सेकंड लगा और अभी अभी संशय होगा, पता नहीं, कहते तो हैं पता नहीं पता नहीं पता नहीं सच है या क्या, तो एकदम से संशय हो गया, ऐसे कैसे होगा, संशय हो गया। तो ये सारा सेकंड खेल एक सेकंड का है। सेकंड में जीवन मुक्ति माना सेकंड में निश्चय, मैं बाबा का हूं बाबा मेरा है, ये एक सेकंड का निश्चय है बस, या तो इस पार या तो उस पार। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना शिव शिव बाबा मेरा पिता 50% है और 50% नहीं है, ऐसे है क्या? पिता है तो पिता है, है नहीं है तो नहीं है। ये तो नहीं कि 50% पिता है 50% नहीं है, ऐसे होता है क्या? माँ बाप 50% होते हैं क्या? माँ बाप, माँ बाप माना या तो 0 या तो 100 है ना। तो शिव बाबा मेरा पिता है ये 0 या तो 100, 50% निश्चय 60% निश्चय होता नहीं है, या तो निश्चय बिल्कुल नहीं या तो 100%। जैसे माँ बाप के प्रति ये नहीं कहेंगे ना, डाउट है माना डाउट है, अगर है वो माता पिता तो है, 50-60% नहीं होता है। तो ये भी बाबा हम, मैं बाबा का बाबा मेरा, कल भी बाबा ने संडे की मुरली में बाबा ने कहा आप लोग आप सब ने पहला निश्चय क्या किया था याद है बाबा की मुरली परसों की, मेरा तो एक शिव बाबा, पहला निश्चय क्या किया, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मेरा बाबा का। फिर दूसरा सब संबंध, खाली पिता नहीं है सब संबंध मेरे बाबा के साथ है, ये दूसरा निश्चय है। फिर और निश्चय कि बाबा हमको कितना ऊंचा वर्षा दे रहे हैं, ये निश्चय। एक तो निश्चय होता है जो बाबा कहते खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, वो अलग बात है, पर ये हमारे जीवन के अंदर कदम निश्चय के, पहला निश्चय हाँ सब मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, दूसरा निश्चय हाँ केवल एक पिता नहीं सब संबंध मेरे बाबा से, फिर तीसरा निश्चय कि बाबा से हमको सारा पूरा वर्षा मिल रहा है, विश्व की बादशाही मिल रही है, इसमें भी कोई संशय नहीं, विश्व की बादशाही पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, बाबा कहते तो हैं सतयुग आएगा अब ये बनेंगे, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, संशय नहीं हो सकता है क्योंकि भगवान कह रहा है, कौन कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है। चलो मनुष्य कहे तो उस पर संशय हो, पता नहीं ये कह तो रहा है ये करेगा भी या नहीं, डाउट होता है ना, क्योंकि मनुष्य के पास तो 100% अथॉरिटी तो नहीं होती है, फिर कोई बहाना दे देगा इसके कारण नहीं हुआ इसके कारण नहीं हुआ, पर भगवान अगर कहे मेरी गारंटी है, अब भगवान अगर गारंटी करता है तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा क्या, वो तो सत्य ही कहेगा ना, वो थोड़ी झूठ कहेगा। हाँ मनुष्य झूठ कह सकता है, पर भगवान अगर कहे कि मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं तो भगवान तो झूठ नहीं कहेगा ना, तो इसलिए वो भी एक निश्चय कि सचमुच भगवान हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो इसीलिए ये निश्चय भी एक इसमें भी कदम है, और वो कितनी देर लगती उस निश्चय में, एक सेकंड बस, या तो हाँ या तो ना, और अंत का पेपर भी बाबा कहते एक सेकंड का, सब एक सेकंड, इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति। अंत का पेपर कौन सा होगा, अंत में एक ही क्वेश्चन का पेपर होगा, उसमें भी वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, या तो हाँ लिखो या तो ना लिखो, यस या नो, वो क्वेश्चन कौन सा होगा कि अंत में बाबा के सिवाय और किसी की याद नहीं, एक बाबा दूसरा न कोई, अंत में वो ही याद रहे। लेकिन वो अंत में बाबा के सिवाय और किसी की याद नहीं रहे, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं होगा अंत में बाबा की याद रहेगी, नहीं रहेगी, तो अब बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब बाबा कहते एवर रेडी होना पड़ेगा, हर वक्त तैयार, हर वक्त तैयार, क्योंकि कभी भी अंत आ सकता है। अब जो प्लेन क्रैश में गए उनको पता था क्या कि अभी ऐसे उन सब की मौत आएगी? कुछ पता नहीं था। जब चढ़े होंगे प्लेन में, बैठे होंगे, तो कितनी खुशी खुशी से बैठे होंगे, हम लंदन जा रहे हैं, अपने बच्चों से मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और एक सेकंड में सब खत्म, कुछ पता नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहना है, क्योंकि सब कुछ अचानक होगा, सब कुछ अचानक होगा। इसलिए ये तीन शब्द बाबा कहते हैं, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल का अभ्यास। ये तीनों का आपस में संबंध है, क्योंकि अंतिम पेपर एक सेकंड का आएगा, या तो हाँ या तो ना, या तो बाबा की याद है या तो बाबा की याद नहीं है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि सदा तैयार, और उसके लिए अशरीरी अवस्था। पहले बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, ये इसमें भी स्टेजेस है। देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी माना हर कर्म करते हुए देही अभिमानी, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं, आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, ये देही अभिमानी स्थिति है। एक आंख कान ये सब मेरे से अलग है, मैं इनसे न्यारी हुई, मैं तो माइक्रोफोन नहीं हूं ना। फर्स्ट जो पहला सेशन हम यही लेते हैं ना, पहला दिन का कोर्स यही रहते आत्मा का, तो देही अभिमानी स्थिति, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ, एक सेकंड में फिर कर्म में आओ। फिर दूसरी स्टेज क्या होती है? विदेही स्थिति। बाबा विदेही स्थिति का वर्णन करते हैं, तो विदेही स्थिति किसको कहेंगे? विदेही स्थिति माना सब कुछ होते हुए भी उसमें मोह नहीं। तो बाबा मिसाल देते राजा जनक का, इतने बड़े महल में रहता था लेकिन विदेही राजा कहलाता था, उनको उस महल का कोई मोह नहीं था, फंसा हुआ नहीं था, उसके आकर्षण में नहीं था, इसलिए सब कुछ करते हुए उसके प्रति आकर्षण नहीं, विकर्षण भी नहीं, उसके प्रति कोई विकर्षण माना हेट्रेड, वो भी नहीं, नफरत भी नहीं और अटैचमेंट भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा आपका क्लास चलेगा, डॉक्टर सचिन आपका क्लास कराएंगे, बहुत बहुत एक एक टॉपिक जो चुनी गई है ना, वो बहुत ही समझ सोच करके चुनी गई है। तो आपकी भट्टी में ऐसे बातें मिलेगी आपको, जिससे आपको जब यहाँ से जाएंगे तो बिल्कुल अंतिम पुरुषार्थ क्या करना है वो आपकी समझ में आ जाएगा, बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आ जाएगी। तो इसीलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या भट्टी, ये आपकी भट्टी है। आ गए वो? तो अभी यहां से आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ये बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के जाएंगे कि अभी हमें अब समय बहुत कम है, मुझे बदलना है। समय तो वो तेजी से बढ़ रहा है, तो हम समय अनुसार तेजी से बढ़ रहे हैं? ये हम अपने आप से पूछें। अगर हम भी बढ़ रहे हैं तो फिर समय से पहले हमको पहुंचना है। ऐसे नहीं समय हो जाए कंप्लीट और हम तैयार ही नहीं हो। तो इसीलिए फरिश्ता बन करके फिर बाबा के साथ जाना है घर, बिना सजा खाए जाना है, ये भी हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। फिर घर जाकर फिर नई दुनिया में आना, उस सत्युगी दुनिया में आना। ठीक है, हाँ आज तो खाली वेलकम है और तो कुछ नहीं ज़्यादा, लेकिन ये आपका आपकी बट्टी का हेडिंग है, बेहद की वैराग्य वृत्ति अंतिम पुरुषार्थ। तो वो अंतिम पुरुषार्थ हमको अभी से ही करना है। तो सब तैयार है, जल्दी घर जाना है कि नहीं? हाँ अभी बाबा बुलावे, सब तैयार है? नहीं बाबा अभी नहीं, अभी तैयार नहीं हुए हैं। होता है ना घर में जब तैयार होते जाना है तो पति तो तैयार हो जाता है, वो पत्नी अभी तक मेकअप कर रही है भाई जल्दी करो, हाँ बस 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 अभी आई और 15 मिनट लगा दिया और आधा घंटा लगा दिया, और वो कहता है जल्दी करो। तो बाबा भी तो कहते जल्दी करो, और बच्चे अभी तक तैयार हो रहे हैं। इसलिए एवर रेडी बनना है। तो जो समझते बाबा हम तैयार है, हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठा रहा है, उठा रहे हैं? जो समझते अभी बाबा घर ले चले हम तैयार है, हाथ उठाओ। नहीं, जो कहते टाइम चाहिए अभी थोड़ा संपन्न संपूर्ण बनने में, वो हाथ उठाओ। चलो तो इसीलिए ठीक है, परंतु बाबा कहते कितना टाइम चाहिए, ये भी बाबा पूछते हैं। तो इसीलिए समय कम है, मंजिल दूर है, तो क्या करना होगा, तेज कदम बढ़ाना होगा। इसीलिए आप सब भट्टी में आए हो। ठीक है, चलो ओम शांति। देखो हमारे गीत गाने वाले आ गए हैं, स्वागत गीत गाएंगे। ओम शांति ओम, हम तो मिलते रहेंगे आपसे।
ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स, इतना सुंदर लक्ष्य और उद्देश्य मिला है ना। कहते जब ट्रेन को अच्छा सा इंजन मिल जाए ना, तो फिर उसकी स्पीड और उसका डायरेक्शन दोनों ही बढ़िया रहते हैं। तो उसी प्रकार दीदी ने हमें बहुत सुंदर से लक्ष्य और उद्देश्य सुनाया। अभी हमारे बीच में निरंजन भाई और हल्दर भाई, दोनों ही विशेष मधुरवाणी ग्रुप से पधारे हैं। उनके मधुर शब्द उमंग उत्साह भर देते हैं, और एक भी बच्ची ऐसी नहीं होती जहां मधुर वाणी ग्रुप से स्वागत न हो। जो पंख दे देते हैं उमंग उत्साह के, जो आत्मा उड़ने लगती है। तो विशेष खास ग्लोबल हॉस्पिटल से आए हैं आप सभी के लिए, तो हम तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, और वो हमारे लिए स्वागत गीत गाएंगे।
सविता दीदी का रूहानी प्यार वारंगल को मिला, शिलू दीदी का, शशि दीदी का रूहानी प्यार हम सबको मिला। मधुबन मौन भट्टी में आकर मन चमन खिला, सबके खिले चेहरे मधुबन में आकर, वाह वाह वारंगल, वाह वाह वारंगल, वाह वाह वारंगल, वाह वाह वारंगल। सबके लिए जोरदार तालियां आ जाए। भट्टी का मेला है सुअवसर, सबके खिले हैं चेहरे मधुबन में आकर। मधुबन मौन भट्टी का मेला है सुअवसर, सबके खिले हैं चेहरे मधुबन में आकर। वाह वाह वारंगल, वाह वाह वारंगल, वाह वाह वारंगल, वाह वाह वारंगल। घर प्यारे मीठे बच्चे आओ, ऐसी हो मौन भट्टी कर्म तीर्थ बन जाओ।
मधुबन बेहद घर प्यारे मीठे बच्चे आओ, ऐसी हो मौन भट्टी कर्मातीत बन जाओ।
कर्म भूमि अवतरण भूमि है, बाबा साथ है पल पल,
किस्मत वाले ही आते यहाँ अक्षय। वाह वाह वरंगल, वाह वाह वरंगल, वाह वाह वरंगल, वाह वाह वरंगल।
हम सब कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? मीठा मधुबन में बैठे हैं, मीठा बाबा के साथ मीठे मधुबन में।
मीठा बाबा मीठा मधुबन, मीठा ही परिवार है, बाबा ही संसार अपना, बाबा ही संसार है।
मीठा बाबा मीठा मधुबन, मीठा ये परिवार है, बाबा ही संसार अपना, बाबा ही संसार है।
एक बाबा दूजा ना कोई, दिल गाता आठों प्रहर,
किस्मत है चमकी बाबा का बनकर। वाह वाह वरंगल, वाह वाह वरंगल, वाह वाह वरंगल, वाह वाह वरंगल।
चारों धाम की यात्रा करें बाबा से रूह रियान, बाबा कहते बच्चे की कितना हो देवान।
चारों धाम की यात्रा करें बाबा से रूह रिहान, बाबा कहते बच्चे की कितना हो देवान।
बाबा का वरदानी हाथ सदा अपने है सिर पर,
बाबा स्वागत करते बाहें लहरा कर। वाह वाह वरंगल, वाह वाह वरंगल,
मधुबन मौन भट्टी का मिला है सुअवसर,
सबके खिले हैं चेहरे मधुबन में आकर। वाह वाह वरंगल, 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 वाह वाह वरंगल।